ये 96 है ना, 96 नंबर का श्लोक है। इसमें आचार्य ये कह रहे हैं, रज्जु रूपे परिज्ञाते सर्वभ्रांतिर न तिष्ठति, अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंच शून्यताम ब्रजेत। प्रपंच जो है वो शून्यताम ब्रजेत, माने प्रपंच समाप्त हो जाता है। प्रपंच समाप्त होने का अर्थ ये है, जिसके अज्ञान से प्रपंच दिखाई देता है, उसका जब ज्ञान होता है तो अज्ञान से दिखाई देने वाली वस्तु समाप्त हो जाती, होती नहीं है, समाप्त हो तो क्या होना है उसको। लेकिन मूलतः जो जीव है, एक आप समझ लीजिए, एक दृष्टांत देते हैं, एक स्वाति का बूंद होता है, स्वाति का मोती तो आपने भी देखे हैं कैसे होते हैं, सीपी में पैदा होते हैं। कुछ कृत्रिम मोती होते हैं, कुछ नैसर्गिक मोती होते हैं। नैसर्गिक अर्थ होता है जिनको बनाने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, उसका नाम है नैसर्गिक। शंकराचार्य ने लिखा, नैसर्गिको यम लोक व्यवहार। ऊपर वाले ने जब व्यवहार करने की सोची तो कैसा किया मालूम है, सत्यानिरति मिथुनी कृत्य नैसर्गिको यम लोक व्यवहार। नैसर्गिक जिसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, क्या किया, सत्यानिरति मिथुनी कृत्य, झूठ और सच को आपस में मिला दिया। क्योंकि शुद्ध सत्य से व्यवहार संभव नहीं है और शुद्ध असत्य व्यवहार कर नहीं सकता, और व्यवहार प्रारब्ध भोगने के लिए जरूरी चीज है। सुखी दुखी होने के लिए व्यवहार अपने में पर्याप्त है। वो करने के लिए क्या किया कुदरत ने, तो सत्यानिरति मिथुनी कृत्य, मिथुनी मैंने एक कर दिया दोनों को, झूठ और सच को मिलाया। कैसे मिलाया, कभी मैं आपको बताता हूं, जैसे रोटी बनाने के पहले आप आटे में पानी मिलाते हो, ऐसे आटा आप हाथ में ऐसे फेंक करके दोबारा आपके हाथ में आ सकता है, नहीं आ सकता। लेकिन पानी में गूंदो आप उसको, फिर देखो आप इसको उछालो, आपके हाथ में आ जाएगा। इसका नाम है मिथुनीकरण। ये कब से हुआ, तो आदि शंकराचार्य कहते हैं नैसर्गिक, जब से व्यवहार की सोची गई। इसलिए जो आदमी बोलता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सबसे बड़ा झूठ वो बोल रहा है, क्योंकि व्यवहार प्रारंभ ही हुआ उससे झूठ और सच। तो सबसे बड़ा झूठ शरीर और सबसे सच्ची आत्मा। देख लीजिए, सबसे झूठ और सबसे सच। और वेदांत सुनते सुनते आप लोग भी बूढ़े हो गए। बूढ़े हुए कि नहीं, दादा दादी तो हो ही गए। उपाधि मिल गई दादा दादी की, उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है होने में। अब देखो, इसमें जो शरीर के अंदर एक मन है, वो मन कुछ आत्मा जैसा है और कुछ शरीर जैसा है, दिखाई नहीं देता इसलिए आत्मा जैसा है, और तुम्हारे को टेंशन देता है इसलिए शरीर जैसा है। गजब की कीर्ति है। इसलिए आचार्य शंकर ने लिखा कि सत्यानृति मिथुनी कृत्य को बनाया। फिर इसके लिए श्रुति ने कुछ उपाय बताए उसको। तो उपाय जो मैं आपको बता रहा था, नैसर्गिक जो मोती है वो कहते हैं सीप की बूंद में, सीप के अंदर पानी की बूंद पड़ती है, सीप के अंदर पानी की बूंद पड़ती है। वो पानी की बूंद ऐसी है, यदि खारे समुद्र में पड़े तो खारा पानी बन जाए, दो कौड़ी की उसकी कीमत नहीं है। लेकिन जब सीप के अंदर वो पड़ती है और कुछ दिनों तक सीप के अंदर वो बंद रहती है, फिर वो मोती बन जाती है। बनी वो पानी से है, पानी जैसी है, लेकिन कुछ दिन सीप के अंदर बंद रहने के बाद उसे आप पानी में मिलाना चाहो, वो पानी में मिल नहीं सकती। बनी किससे है? पानी से। लेकिन अब तुम कोशिश करो उसको पानी में मिलाने की, तो मिल नहीं सकता है। ऐसे ही जब मनुष्य शास्त्र सुनता है, भगवान शंकराचार्य ने लिखा गीता के 12वें अध्याय में, शास्त्राचार्य उपदेश जनित शुद्ध संस्कृत मन। जब आप शास्त्र के आचार्यों के पास में बैठते हैं, फिर तुम्हारा मन सीप की तरह होता है और उसमें ज्ञान के शब्द जब पड़ते हैं, जो बूंदें हैं वो पड़ती हैं, और तब आप विचार करते हैं, फिर जब आपकी जो भावना बनती है वो फिर मोती के समान होती है। पानी में मिलाओ तो फिर बनी पानी से है, उसी से तुम्हारा मन बना, उसी से जनक का मन बना। लेकिन जनक के मन में और आपके मन में बुनियादी फर्क नहीं है। मैंने मूलतः जो बुनियाद जो जिस चीज से रखी गई है वो फर्क नहीं है, और साधना से इतना फर्क है कि जो मन आपके 24 घंटे दुख का कारण है, वो मन उसके 24 घंटे सुख का कारण बन गया। यही तो बताया ना अष्टावक्र ने, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंध विषयासक्त। लेकिन उस पानी को मोती बनने के लिए कुछ दिन तक सीप में बंद रहना जरूरी है। सीप में बंद रहे बगैर रहना जरूरी है उसका, और फिर वो ऐसा बनता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि पानी से बना हुआ मोती इतना विलक्षण हो गया। अब वो पानी के साथ में रहता तो जरूर है, लेकिन पानी के साथ में घुलता मिलता नहीं है। कहां उसका अस्तित्व, खारे समुद्र में खत्म हो जाता, और कहां वो मोती भगवान के सिर पे चढ़ गया। देखिए क्या, इसी प्रकार से श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य मंतव्यश्च उपपत्ति भी, श्रुति आज्ञा दे रही है आपको मेहनत करनी है, कोई दूसरा आपके लिए मेहनत नहीं कर सकता। किसी ने लिखा है खुद पे भरोसा रख, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। हम खुद पे भरोसे नहीं रखते, किसी अपनी जिंदगी में किसी फरिश्ते को ढूंढते हो। तुम जाते हो हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, किसको ढूंढने जाते हो? भगवान को तो क्या ढूंढते हो, फरिश्तों को ढूंढते हो, और वो भी फरिश्ते तुम्हारे जैसे होते हैं। रिश्ते तभी बनते हैं जब फरिश्ते तुम्हारे जैसे हों। तुम्हारे जैसे नहीं हो तो तालमेल बैठना बहुत मुश्किल है। इसलिए खुद पे भरोसा रख, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पक्षियों के पास कहां नक्शे होते हैं? पक्षियों के पास कहीं नक्शे होते हैं क्या? तुम बोलते हो अंग्रेज आते हैं और यहां पूरा भारत घूम लेते हैं, अलाना कर लेते हैं, नक्शा लेकर के आते हैं। आप देखो कभी सुबह घूमने के लिए जाओ इधर ठंडी के समय जनवरी में, कहां कहां से वो पक्षी आते हैं और समय पे आ जाते हैं। उनके पास कोई नक्शे होते हैं क्या? मंजिल तो उनको भी मिल जाती है, रास्ते तो वो भी खोज लेते हैं, क्योंकि उनको अपने पंखों पे खूब भरोसा होता है। हमें शास्त्र के हिसाब से केवल साधना करनी होती है। इसलिए श्रुति जैसा कहती है श्रोतव्यः श्रुति वाक्येभ्यः, क्या सुनना है, क्या हमारे लिए उपयोगी है। एक जाट कोई था, जाट समझते हो, जाट, वो बीमार पड़ा। तो बीमार पड़ा तो उसको दवाई देने के लिए बड़े बड़े वैद्य वैद्य बुलाए गए। कोई बुलाओ बोला इसको नीम पिलाओ घोट के, तो वो मुंह ढक ले अपना। कोई बोले इसको चिरायता पिलाओ तो भी मुंह ढक ले। वो कोई बोले कड़वा कड़ाता पिलाओ इसको, मुंह ढक ले। उतने में उसका दोस्त आया, उसने कहा इसको जरा थोड़ा बूरा और घी खिलाओ। बूरा घी समझते हो? तो वो बोलता है अपनी माँ को, अरे ये तो वैद असली है, इसकी तो कोई सुनता ही नहीं है, और ये फालतू की आदमी की बात पे ध्यान दे रहे हो। असली आदमी तो असली बात तो ये बता रहा है। श्रुति वो नहीं करती जो हम चाहते हैं, श्रुति वो करती है जो हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए श्रुति कहती है श्रोतव्यः श्रुति वाक्येभ्यः, श्रवण वो मत करो जो तुम्हारा मन चाहता है। तुम्हारा मन तो कुछ और ही सुनना चाहता है, लेकिन तुम्हारे लिए उपयोगी कुछ और ही है, ये मां समझ सकती है। इसलिए आचार्य ने लिखा कि श्रुति जो है वो मां के समान है। हाँ, तो इसलिए बता रहे हैं, देखो जब वो बैठा फिर मोती बन गया वो, और फिर वो एक अलग हो गया। इसी प्रकार जब आप साधना करते हो, श्रवण करते हो, तो आपका मन मोती के समान हो जाता है। वो पानी में मिलता नहीं। जनक का मन मोती के समान हो गया, तब जनक का राजमहल जला। उसने कहा उसमें याज्ञवल्क्य जी महाराज, चातुर्मास का समय था, तो जनक ने कहा कि महाराज जी इस बार चातुर्मास आप हमारे घर में करिए। याज्ञवल्क्य ने कहा हमारे साथ में तो बहुत लोग रहते हैं। बोला कुछ बात नहीं है, राजमहल है, सब व्यवस्था हो जाएगी। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा अध्यात्म विद्या रसिको वही विदेह राज जनक। जनक अध्यात्म विद्या के इतने रसिक थे, उन्होंने अपने जितने मंत्री थे सब मंत्रियों को कहा कि प्रातः काल याज्ञवल्क्य जी महाराज स्वाध्याय कराएंगे, सब बैठा करो। सब बड़े प्रेम से सब बैठते थे।
एक दिन जनक को आने में देरी हो गई थोड़ी सी, जनक को आने में देरी हो गई, तो याज्ञवल्क जी ने स्वाध्याय शुरू नहीं किया, शुरू नहीं किया। तो याज्ञवल्क का जो चेला था उसने कहा, देखो गुरुजी कैसा पक्षपात करते हैं बताओ, इतना बड़ा राजा है, मोटी दक्षिणा देता है, और इसलिए वो आए नहीं। और वो तो याज्ञवल्क को तो उनके बारे में आता है, जनक और याज्ञवल्क के बारे में ऐसा आता है, देवी भागवत में जनक के बारे में आता है और बृहदारण्यक में याज्ञवल्क जी महाराज के बारे में आता है। तो याज्ञवल्क समझ गए थोड़ा सा कि चेले का मुंह जो होता है, क्योंकि जितने महात्माओं के करीब के चेले होंगे ना, उनके अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वो सब जानते हैं। जिसके करीब जो रहता है वो उसकी सब कुछ जानता है, और करीब रहने के बाद यदि श्रद्धा हो जाए तो समझ लो आदमी सही है। अब याज्ञवल्क ने फिर कहा, ये तो ठीक नहीं है, संशय हो जाना इसके लिए घातक है। तो उस समय याज्ञवल्क ने अपनी माया का प्रयोग किया था, जो महल जलाया था ना, जला वाला कोई नहीं महल, आपको बता देता हूं बात, ध्यान रखना, याज्ञवल्क ने अपनी माया का प्रयोग किया और महल जला दिया। जब महल जलाया तो सब लंगोटी जिनकी थी वो लंगोटी वाले सब भाग पड़े, और जनक वहीं बैठा रहा। फिर खंडनकार ने लिखा है, क्व ममत्व मोक्षूणाम अनिर्वचनीय वादिनाम आदाही मिथिलाम नाथ न मे दहति किंचन। उसने कहा, हे नाथ, मेरा कुछ होता तो जलता, मेरा कुछ है ही नहीं। देखो, आदमी को फंसाने के लिए लंगोटी काफी है, यदि अज्ञान है तो आदमी बहुत छोटी चीज में उलझ जाता है, यदि ज्ञान है तो आदमी बड़ी सी बड़ी चीज में भी नहीं उलझ पाता। ऐसे ही व्यवहार करके चला जाता है, कुछ पता ही नहीं लगता। बात तो केवल समझ ली है, यदि ममत्व की निवृत्ति नहीं, ममत्व की निवृत्ति मैंने ये मेरा है, ये निश्चय यदि आदमी का हो जाए कि जिसे आज मैं मेरा कह रहा हूं वो उसको कल कोई और मेरा कहता था, और कल कोई और मेरा कहेगा, इतना यदि निश्चय हो जाए तो आदमी सारी दुनिया का व्यवहार कर ले तो भी उसको करने का अभिमान नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्नेत तत्वविद्। इतना ज्ञान इतना गहरा है, लेकिन कठोपनिषद में यमराज कहते हैं, ये बात सुनने से कुछ नहीं होता, न विरतो चेत दुश्चरितात्। यदि तुम्हारे आचरण में तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन न हुआ तो सुनने का फायदा क्या है फिर? इसलिए बोलते हैं, देख लीजिए, चलो थोड़ा सा, रज्जु रूपे परिज्ञाते परिज्ञाते परिगार संस्कृत में कहते हैं, चारों तरफ से सम्यक रूप से अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने पर सर्प भ्रांतिर न तिष्ठति, भ्रांति खत्म हो जाती। तो सर्प ज्ञान मैंने व्यवहार, भ्रांति ज्ञान मैंने प्रातिभाषिक। जैसे व्यवहार का ज्ञान हो जाने के बाद प्रातिभाषिक चीजें आपके आकर्षण का केंद्र बिंदु नहीं रहती, आपका कोई आकर्षण उसके प्रति नहीं रहता। रेगिस्तान में रहने वाला व्यक्ति
मरुमरीचिका में चमकता हुआ पानी उस व्यक्ति को कभी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकता। कबीर ने कहा, माया महाठगनी हम जानी, हम जानी। यदि आप समझ जाएं कि मरुमरीचिका में दिखने वाला जो पानी है ये आदमी की प्यास नहीं बुझा सकता, तो वो पानी कभी आपको धोखा नहीं दे सकता। और प्यास बुझा सकता है ये जो धारणा हमारी है, इस धारणा के कारण हम धोखा खाते हैं। इसलिए बताते हैं, देखो आगे आगे की पंक्ति देख लीजिए, अधिष्ठान तथा ज्ञाते, ज्ञाते हो गया वो छपने में गलती है, वो ज्ञाते होना चाहिए, अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंच शून्यताम भ्रजेत। जो प्रपंच है वो शून्य हो जाता है अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने पर। क्योंकि देखिए, ये जितने प्रपंच, प्रपंच का अर्थ क्या बताया था आपको, ये पांच आपस में ऐसे उलझ गए, इनको सुलझाना बड़ा मुश्किल है। और जब इनका अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है तो ये सब प्रपंच एकदम शांत हो जाता है। चलो अच्छा, आगे क्या बताते हैं, 97 नंबर का श्लोक, देहस्यापि प्रपंचत्वात् प्रारब्ध अवस्थिति कुतः अज्ञानी जनबोधार्थम प्रारब्धम भक्ति वै श्रुति। देखो भगवान शंकराचार्य जी महाराज क्या कहते हैं, देख लीजिए कि कभी आप ठंडे प्रदेश की यात्रा आप कभी आपने की नहीं किया होगा, जहां 0-0 टेम्परेचर रहता है, यात्रा किया क्या, क्या हुआ वहां पे बता, चलो तुमने किया यात्रा, अरे पेट्रोल जम जाता है, गाड़ी चलती नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है। अच्छा, वो धक्का नकली होता है कि असली होता है? देखो, जब तक इंजन गर्म नहीं होगा तब तक गाड़ी चलेगी नहीं, और जब तक गाड़ी चलेगी नहीं तब तक इंजन गर्म नहीं होगा। इसको बोलते हैं संस्कृत में अन्योन्याश्रय दोष। क्या नाम इसका है? हाँ, एक दूसरा एक दूसरे के आश्रित है। गर्म होगा इंजन, गाड़ी चलेगी, और चलेगी तो इंजन गर्म होगा। अब क्या करेंगे इसके लिए? अब धीरे से आदमी नीचे उतरता है, तो चार आदमी होते, तीन नीचे उतरते हैं और धक्का मारते हैं, तो धक्का असली है कि नकली है? वो लेकिन भाई पूरे रास्ते भर यदि धक्का मार के ले जाना पड़े तो मैं समझता हूं पैदल आदमी जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन थोड़ी देर तक धक्का मारना पड़ता है और गाड़ी हमेशा के लिए चालू हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अज्ञानी जन बोधार्थम, अज्ञानियों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवती श्रुति का विशेष, जो बच्चा माता पिता का थोड़ी नासमझ होता है ना, माता पिता उसका पक्षपात ज्यादा करते हैं, और उसमें जो समझदार होता है उसको लगता है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, तेरे साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, तेरा सम्मान है। वो माता पिता जो आश्रय उसको दे रहे हैं, वो आश्रय तेरे को भगवान ने दे रखा है। जो समझ उसको माता पिता देते हैं, वो समझ तुमको भगवान ने दे रखी है। जो सामर्थ्य उसको माता पिता प्रदान करते हैं, वो सामर्थ्य तुमको भगवान ने दे रखी है, निसर्ग ने दे रखी है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं, अज्ञानी जन बोधार्थम, अज्ञानियों को भी ज्ञान होवे। क्योंकि केवल ज्ञानी को ज्ञान हुआ तो क्या हुआ, अज्ञानी को भी ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए क्या कहते हैं, प्रारब्धम भक्ति वैश्रुति ही, भगवती श्रुति प्रारब्ध बोलती है। अब उदाहरण के लिए महाराज परीक्षित ने जो ऋषि के गले में सांप डाला था वो प्रारब्ध था या उसका नया कर्म था, क्या लगता है आपको? कर्म था उसका, प्रारब्ध नहीं, कर्म था उसका। देखो प्रारब्ध, जब प्रारब्ध पशु भोगता है और जो प्रारब्ध भोगता है उसको ना पाप लगता है और ना लगता है। आपको जैसे बताया एकादशी के दिन ब्राह्मण जो है एक तीन काल संध्या करने वाला, ऐसे मिलते नहीं अभी, पहले मानो मिल गया, तीन काल संध्या करता है। कोई आपको, एक आपको बताता हूं मैं, पढ़ना भागवत जाके, सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ना। जब अक्रूर को कृष्ण का दर्शन होता है, अक्रूर विचार करते हैं कि मैंने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया कि मुझे कृष्ण का दर्शन हो गया। तो उन्होंने क्या हेतु बताया वहां पे मालूम है आपको? क्या? देखना भागवत को, बता देता हूं, फिर भी देखना श्लोक को, जरूर देखना घर में जाके। उसने कहा कभी किसी बहुत आवश्यकता वाले व्यक्ति, जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होगी उसकी वो आवश्यकता मैंने पूरी की होगी। किसी गरीब को धन दिए, शंकराचार्य ने कहते हैं देयम दीन जनाय च वित्तम नेयम सज्जन संगे चित्तम। किसी प्यासे को मैंने जरूर कभी पानी पिलाया होगा। तुम एक स्वर्ण का मंदिर बना दो, उसकी दो कौड़ी की कीमत नहीं है यदि तुम किसी प्यासे को पानी पिला देते हो। उसने कहा कि कृष्ण दर्शन का फल यही है कि जिस किसी आदमी की कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं, जरूरत, जिसके बिना उसका जीवन न चल रहा हो, और मैंने उसको ऐसी चीज दी होगी जिसके कारण जो मैं चाहता था, जो एक प्राणधारी चाहता है और उसकी चाहत पूरी हो जाए, ये प्राणधारी की चाहत कब पूरी होती है कि उसने कभी किसी की चाहत पूरी की हो, वास्तविक चाहत पूरी की हो। उसने ये हेतु दिया कृष्ण के दर्शन में, दशम स्कंद में देखिएगा आप, लोगों की इतनी बारीकी से नजर नहीं जाती, फिर वहां बताया उसने। इसलिए बताते हैं देखो देयस्यापि प्रपंच, शंकराचार्य पहली पंक्ति में सिद्धांत बता रहे हैं और दूसरी पंक्ति में हेतु बता रहे हैं। पहली पंक्ति में सिद्धांत बता दिया ये जो देह है ये भी प्रपंच है और प्रपंच झूठा है। मैंने कल आपको बताया था कि देह शब्द का अर्थ ही है देह उपचय, मिलावट। आप तो सब यहां ब्रह्मज्ञानी बैठे हुए हैं लगभग, एक आध को छोड़ के हैं, कोई भी समझ लेना हो, एक तो समझ लेना कोई भी अपने को, मिलावट पंचदशी में जो पंचीकरण है वो पंचीकरण में मिलावट की प्रक्रिया कैसी बताई गई है मालूम है आपको? आपके शरीर में सूरज से भी कुछ उधार लिया गया है। हाँ, जैसे आप बैंक से कर्जा लेकर के अपना व्यवहार चलाते हो और लखपति से करोड़पति और अरबपति बन जाते हो, लेकिन उस शर्त तो यही है कि कर्जा चुकाना पड़ता है। ये शरीर भी पांचों भूतों से कर्जा लिया हुआ है और इसकी गारंटी परमात्मा ने ले रखी है
और गारंटी लेने वाला बहुत तकड़ा है, वो तुम्हारी बड़ी दुर्दशा कर देता है। जो कर्जा वापस न करे भाग नहीं सकता, जैसे विजय माल्या भाग गया। हाँ, भागने का कोई उपाय नहीं है। पृथ्वी दिया, क्योंकि शरीर ही हमारा पार्थिव है। ये आंखें दी, सूर्य से तेज कर्जा लिया। ये कान दिए, ये आकाश से कर्जा लिया शब्द का। ये जीभ दी, पानी से रस लिया। शरीर बना, वायु से त्वचा ली। ये सब पांचों भूतों का कर्जा लिया है। और फिर ये कर्जे से आपको कर्जा भी उतारना है और धनी भी बनना है। तो कर्जा कैसे, कर्जा उतारने का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का कर्जा कैसे उतारोगे मालूम है? पृथ्वी का कर्जा उतारो क्षमा करके। आपके अंदर क्षमा जितनी बढ़ती है, पृथ्वी आपको ऊर्ण कर देती है। जल के अंदर सरलता है, सूर्य के अंदर सबके प्रति समान भाव है। वो फूलों पे भी गिरता है उसकी रोशनी, कांटों पे भी गिरती है, वो पक्षपात नहीं करती। और कर्जा उतारना है और साथ में धनी भी बनना है। धनी बनना मतलब अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति करनी है। वही सबसे बड़ा धनी वही है, और कोई धनी वनी नहीं है। वो आपकी जो वास्तविक संभावना आपके अंदर है, जब तक वो उस वास्तविक संभावनाओं को आप प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक साधना जीवन के चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। अज्ञान एक ऐसी दशा है जीवन की, उसके लिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं अज्ञानी जन बोधार्थम, अज्ञानी को भी ज्ञान होवे। तो उसके लिए किसका सहारा लेते हैं? हैं? अज्ञानी जन बोधार्थम प्रारब्धम भक्ति श्रुति, श्रुति का सहारा लिया। श्रुति क्या चीज है? ये परमात्मा की सांसें हैं। जैसे तुम्हारे सबसे करीब कौन है? आपकी सांसें। ऐसे ही वेदों के अंदर निश्वसितम अस्य वेदः ऋग यजुः सामः, परमात्मा की सांसें वेद हैं। तो परमात्मा के जो बहुत करीब है, वो परमात्मा के करीब उन लोगों को पहुंचाना चाहते हैं जो कभी पहुंच नहीं सकते। अज्ञानी जन जो कभी पहुंच नहीं सकते, उनको भी यदि पहुंचाने का कोई काम कर सकता है तो कौन कर सकता है? अरे भाई, तुम्हारे पास यदि पहुंचना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक आदमी कहता था कि महाराज, बड़े ऑफिसर को घूस देना, कोई कोई बड़े कड़क होते हैं तो घूस देना बड़ा कठिन होता है, तो उसकी पत्नी को यदि तुम सोने के कंकण दे दो, उसके सामने वो भी लाचार है कौन? हाँ, ये देख लीजिए बात। यही अज्ञानी जन बोधार्थम, अज्ञानी भी उसे समझ सकें, उसके लिए प्रारब्धम भक्ति वै श्रुति। श्रुति पहले उसके अंदर धैर्य बंधाती है। श्रुति कहती है दुखी मत हो, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, ये भोग से खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रारब्ध परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं है। ऐसा कौन कहती है? भक्ति श्रुति ही, श्रुति ऐसा कहती है। श्रुति समझाती है उसको, चलो ऐसे प्रारब्ध की बात तो काफी लंबी चौड़ी है, और श्रुति ने भी अज्ञानी के ऊपर बड़ी कृपा कर दी। अब आगे ये जो प्रकरण है ना, इसके लिए अब एक नया जो है ना, आज थोड़ी पहले तक बोलना है, पहले बंद करना है, पांच मिनट पहले बंद करते हैं, पांच मिनट पहले, ठीक है। अच्छा देखो, अभी बड़ी सुंदर श्रुति आ गई अभी। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भगवान अब कह रहे हैं शंकराचार्य जी महाराज, ये शंकराचार्य का श्लोक नहीं है, ये उपनिषद का मंत्र है, ये आप समझ लीजिएगा बात। क्या बोलते हैं, क्षीयन्ते चा, पहले जो आगे है ना, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे बहुत्वं तन्निषेधार्थं श्रुत्या गीतं च यत् स्फुटम्। श्रुति ने जो गीत गाया वो बहुत स्फुट का मतलब होता है, एकदम साफ 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 बताया। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। क्षीयन्ते अस्य कर्माणि, लेकिन कैसे समाप्त हो जाते हैं, वो पराबरे दृष्टे, पर मैंने पंचदशी देखना, पर मैंने ब्रह्मा, अबर मैंने निकृष्ट, ब्रह्मा भी जिसके सामने निकृष्ट है उसको बोलते हैं परावर, और वैसे सीधा अर्थ करते हैं परमात्मा, लेकिन शब्दार्थ ये है, परह हिरण्यगर्भ अबरह निकृष्ट, यस्मात हिरण्यगर्भ भी जिससे निकृष्ट है उसका नाम है पराअवर, वो जो परमात्मा, उसको देखने पर, क्योंकि अज्ञानी को श्रुति बता, देखो आदमी का दिल कब जग जाता है पता नहीं है। एक लड़की थी, उसका नाम था विद्योत्तमा, नाम सुना है? अरे ये पक्का कालिदास ही है, बोले कालिदास, कालिदास की पत्नी थी वो, तो वो उसने कहा था कि मैं शादी उसी से करूंगी जो शास्त्रार्थ में मेरे को हराएगा, तो कोई उसको शास्त्रार्थ में हरा नहीं सका, तो पंडितों ने सोचा कि इसकी शादी सबसे बड़े मूर्ख से कराएंगे। अब मूर्ख को ढूंढने चले तो मूर्ख भी नहीं मिलता समय पे, अभी यहां ढूंढे हम किसी मूर्ख को तो मिलेगा क्या, कोई प्रमाणिक चाहिए, मूर्ख ही होना चाहिए पूरा। अब पंडित गए मूर्ख को ढूंढने के लिए, तो कालिदास को देखा उन्होंने, तो जिस टहनी पे बैठा है उसी को वो काट रहा, उन्होंने कहा ये मूर्ख बड़ा तकड़ा मूर्ख है ये, तो उसको पूछा शादी करेगा, बोले हाँ, तो बोले पक्का मूर्ख है, शादी करने के लिए जो तैयार बैठा है वो पहला पक्का मूर्ख ही है। अब बोला दूसरा और प्रमाण ले लो इससे, कुछ क्या प्रमाण लेना है इससे। उसको पूछा कि तू जिस टहनी पे बैठा है उस टहनी को क्यों काट रहा है, और पंडित बड़े बड़े तिलक छाप लगा के गए थे वो, उन्होंने कहा मूर्खों, अब एक तो टहनी नीचे गिराऊं फिर नीचे उतरूं, तो मैंने सोचा उसी टहनी पे बैठूं, टहनी नीचे गिरेगी तो मैं भी सीधा उतरने का झंझट नहीं, इतनी बड़ी इतनी और मेहनत काहे को करना, चढ़ने में इतनी मेहनत करिए, उतरने में फिर उतनी मेहनत करो, तो टहनी पे बैठ गए कट गए, कट गए। उन्होंने कहा ये बराबर है, ये जो है ना इसकी शादी का, मैं जो बात आपको बता रहा हूं वो समझने की बात है। अब वो शास्त्रार्थ हुआ, तो उसने विद्योत्तमा ने कहते हैं ऐसी उंगली करी, तो कालिदास सोचा कि ये बोल रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी, तो कालिदास ने कहा दोनों फोड़ दूंगा मैं तो। तो उसने कहा भाई ये क्या है सब, उसने कहा देवी आप कह रही हैं कि तत्व एक है, कालिदास कहते हैं एक ही तत्व के दो रूप हैं जीवात्मा और परमात्मा। अरे बोली तो बहुत बड़ा और बड़ा पंडित है ये तो। उसके बाद उसने कहा भूत पांच हैं। अब उसने सोचा ये चांटा मारने के लिए बोल रही है। अब चांटा से ज्यादा दर्द किससे? घूंसे से होता है। तब उसने ऐसा कहा, तो उसने कहा ये क्या कर रहा है पागल? उसने कहा आप कह रहे हैं कि पांच भूत हैं और ये कह रहा है कि पांच भूतों से मिला के एक शरीर बना हुआ है। अब शादी हो गई तो विद्युत्मा को मालूम पड़ा ये तो मूर्ख है, पंडितों ने चाल चली तो उसने उसको एक लात मारी, उसको भगा दिया बाहर। उसको इतना दुख हुआ, कालिदास को इतना दुख हुआ, वो जंगल में जाकर के बैठ गया। वहां उसने तप किया और भगवती सरस्वती प्रकट हो गई उसके सामने। जब सरस्वती प्रकट होती है फिर वो घर पे आता है, दरवाजा खटखटाता है। वो तो दूसरा शब्द वहां लिखा है कपाटम देही, ऐसा बोलता है वो, कपाटम देही बोलता है, दरवाजा खोलो। तो उसकी पत्नी तो बहुत पढ़ी लिखी थी, क्रोध उसको जबरदस्त था। उसने कहा अस्ति कश्चित वाग विशेष। उसने अपनी पत्नी, उसकी पत्नी कहती है तुम दरवाजा खुलवा रहे हो तो क्या कोई विशेष बात है? अस्ति कश्चित वाग विशेष, कोई 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 विशेष बात है कि दरवाजा खोलूं? कालिदास वहीं से वापस चला जाता है। तब उसने तीन महाकाव्य की रचना की, अस्ति से अस्त्युत्तरस्याम दिशि देव आत्मा हिमालयो नाम नगादिराज कुमार संभव, और उसके बाद क्या लिखा, अस्ति कहां, फिर मेघदूत है कश्चित कांता विरह गुरुणा, मेघदूत लिखा, और वाग, वाग से क्या बनाया, रघुवंश महाकाव्य। वागर्थाविव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो, ये बनाया। कहने का तात्पर्य क्या है कि आदमी को थोड़ा जब किसी बात से बड़ा झटका लगता है वो झटका भी आदमी की आंखों को खोल देता है। तो अब जो है पांच मिनट, में पांच बोला था लेकिन चार मिनट रह गए, अब चार मिनट में ये कार्यक्रम का थोड़ा सा क्या है जरा देख लो थोड़ा सा।